सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 11वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूं कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम सुनने वाले हैं दृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म की कथा, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने बकासुर के वध की कथा सुनी थी। भीम ने अपने बल और पराक्रम से बकासुर का वध कर दिया और ब्राह्मण और उसके परिवार की रक्षा भी की। जिस ब्राह्मण के घर में पांडव निवास कर रहे थे, एक दिन माता कुंती ने उसी ब्राह्मण के परिवार को जोर जोर से विलाप करते हुए सुना था। उनकी सहायता करने की इच्छा से माता कुंती उनके पास गई और उनके विलाप का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें बकासुर के विषय में बताया और ये भी बताया कि इस बार ब्राह्मण को बकासुर के लिए भोजन लेकर जाना है, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास उस राक्षस के लिए भोजन नहीं है, और अगर ब्राह्मण बकासुर को उसकी इच्छा अनुसार भोजन प्रदान नहीं कर पाया तो वह उसे और उसके परिवार को खा जाएगा। पूरी बात जानने के बाद माता कुंती ने भीम को बकासुर का वध करने के लिए भेजा। अंत में भीम ने अपने बल और पराक्रम से बकासुर का वध कर दिया। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। बकासुर की आवाज सुनकर उसके चित्कार से भयभीत होकर राक्षस परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ अपने घर से बाहर निकल आए। भीमसेन ने उन सभी के सामने यह शर्त रखी कि अब से वे सभी राक्षस मनुष्यों का शिकार नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने भीम की बात को नहीं माना तो बकासुर की तरह उनका भी वध कर दिया जाएगा। तब से नगरवासियों ने राक्षसों का बड़ा सौम्य स्वभाव देखा। भीम ने बकासुर की लाश उठाकर नगर के दरवाजे के पास रख दी और सभी की दृष्टि से बचते हुए वहां से चले गए। भीम के बल से बकासुर को मारा गया देखकर उस राक्षस का परिवार डरकर इधर उधर भाग गया। उस राक्षस को मारने के बाद भीम ब्राह्मण के घर में लौट आए और उन्होंने युधिष्ठिर को सारा किस्सा कह सुनाया। सुबह जब लोग नगर के बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि बकासुर खून से लथपथ पृथ्वी पर मरा पड़ा है। पूरी नगरी में यह समाचार फैल गया। बस फिर तो क्या, हजारों की संख्या में नगरवासी, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ मिलकर बकासुर को देखने के लिए वहां आने लगे। उस राक्षस को मरा हुआ देखकर उन्हें बहुत संतोष हुआ। उन सभी लोगों ने देवताओं का पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने यह विचार किया कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी। सभी को यह ज्ञात हो गया कि इस बार ब्राह्मण की बारी थी। सब लोग ब्राह्मण के पास आकर पूछने लगे। उनके बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने पांडवों के बारे में न बताते हुए इस प्रकार कहा, कल जब मुझे भोजन पहुंचाने की आज्ञा मिली उस समय मैं अपने परिवार के साथ विलाप कर रहा था। मेरा विलाप सुनकर एक ब्राह्मण मेरे पास आए। उन्होंने पहले मेरे कष्ट का कारण पूछा, इसके बाद अपनी शक्ति पर विश्वास दिलाकर हंसते हुए मुझसे कहा, आज मैं स्वयं ही उस राक्षस के लिए भोजन ले जाऊंगा। मेरे मना करने के बाद भी वे मुझसे भोजन सामग्री लेकर उस राक्षस के पास चले गए। उन्हीं की शक्ति से आज हम इस राक्षस के प्रकोप से मुक्त हो पाए हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर सभी लोग खुशी खुशी वापस नगर को लौट गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि बकासुर का वध करने के बाद पांडवों ने आगे क्या किया। बकासुर के वध के कुछ दिन बाद कठोर व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण उसी ब्राह्मण के घर आए, जिस ब्राह्मण के घर में सभी पांडव अतिथि बनकर रह रहे थे। ब्राह्मण ने आए हुए अतिथि का भली भांति पूजन कर उन्हें ठहरने के लिए स्थान दिया। वह ब्राह्मण बड़ी सुंदर और कल्याण करने वाली कथाएं कहा करते थे। उनकी कथाएं सुनने के लिए पांडव माता कुंती के साथ उनके पास जा बैठे। पहले उन्होंने अनेक देशों, तीर्थों, नदियों, राजाओं और कई आश्चर्यजनक स्थानों और नगरों का वर्णन किया। बातचीत के अंत में ब्राह्मण ने यह भी बताया कि पांचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। दृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति और द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा यानी कि द्रौपदी का बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ की वेदी से जन्म होने की बात बताई। ब्राह्मण से दृष्टद्युम्न और कृष्णा के जन्म की कथा को विस्तार से सुनाने के लिए कहा। पांडवों के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने कथा सुनाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, द्रोण के साथ हुए युद्ध में पराजय का सामना करने के बाद द्रुपद अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे। उनका मन शोक से व्याकुल था। वे रात दिन इसी चिंता में पड़े रहते थे कि मेरी कोई श्रेष्ठ संतान नहीं है। द्रोण से बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद हमेशा पुत्र की ही कामना किया करते थे। जब द्रुपद द्रोण को परास्त करने का कोई उपाय न जान सके तब वे यमुना और गंगा दोनों के तटों पर घूमते हुए ब्राह्मणों की एक पवित्र बस्ती में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त न की हो। द्रुपद ने वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले काश्यप गोत्र के दो ब्रह्म ऋषियों को देखा जिनका नाम याज और उपयाज था। वे दोनों ही शांत और ब्रह्मा के तुल्य प्रभावशाली थे। वे वैदिक संहिता के अध्ययन में लगे रहते थे। वे दोनों ब्राह्मण सूर्य देव के भक्त थे और बड़े ही योग्य श्रेष्ठ ऋषि थे। उन दोनों की शक्ति को समझकर राजा द्रुपद ने उन्हें भोग अर्पण करने का संकल्प करके निमंत्रित किया। उन दोनों में छोटे उपयाज थे। वे अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। द्रुपद एकांत में उनसे मिले और इच्छा अनुसार भोग्य वस्तुएं अर्पण करके उन्हें इच्छा अनुसार भोग और दान देने की प्रतिज्ञा करके उनकी सेवा में लग गए। एक दिन राजा द्रुपद ने सही समय देखकर ऋषि उपयाज से कहा, विप्रवर उपयाज, आप मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए जो द्रोणाचार्य को मार सके। ऐसा करने पर मैं आपको 10 करोड़ गायें दूंगा। आपके मन को प्रिय लगने वाली जो भी वस्तु होगी वह सब आपको अर्पित कर दूंगा। ऐसा कहने पर ऋषि उपयाज ने कहा, राजन, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। लेकिन राजा द्रुपद अपना कार्य पूरे करने की इच्छा से उनकी सेवा में लगे रहे। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष बीतने पर उपयाज ने द्रुपद से कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक समय घने वन में विचर रहे थे। उस समय उन्होंने जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के संबंध में किसी को कुछ भी नहीं पता था। लोगों ने उनके इस कार्य को देख लिया और सोचा कि ये अपवित्र वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हारी पुत्र प्राप्ति में सहायता कर सकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। राजा द्रुपद उपयाज की बात सुनकर ऋषि याज की मन ही मन निंदा करते हुए उनके आश्रम जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने याज मुनि को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, भगवन, मैं आपको 80,000 गायें भेंट करता हूँ। आप पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा यज्ञ करा दीजिए। मैं द्रोण की मृत्यु चाहता हूँ। मैंने आपके ब्रह्म तेज की शरण ली है। आप सभी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बढ़कर हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो युद्ध में द्रोणाचार्य का वध कर सके। तब याज ने तथास्तु कहकर द्रुपद की बात मान ली। इसके बाद महातपस्वी याज ने राजा द्रुपद को पुत्र सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ का उपदेश दिया और कहा, राजन, इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते हो तुम्हें वैसा ही पुत्र मिलेगा। तुम्हारा वह पुत्र महान, पराक्रमी, महातेजस्वी और महाबली होगा। इसके बाद द्रोण के पुत्र का संकल्प लेकर याज जी ने यज्ञ आरंभ किया। जैसे जैसे मुनि ने आहुति अग्नि में डाली वैसे ही उस अग्नि से देवताओं के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। उसका शरीर अग्नि के समान था। उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था। उसके माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा था। उसने उत्तम कवच धारण कर रखा था। हाथों में खड़ग, बाण और धनुष धारण किए वह बार बार गर्जना कर रहा था। वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा बैठा, मानो वह अभी युद्ध के लिए जा रहा हो। अपने पुत्र को देखकर द्रुपद को बड़ा हर्ष हुआ और वे जोर जोर से बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसी समय एक आकाशवाणी भी हुई, यह राजकुमार पांचालों के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करने वाला है। यह राजा द्रुपद का शोक दूर करके द्रोणाचार्य के वध के लिए ही जन्मा है। उसी यज्ञ वेदी में से एक सुंदर कन्या भी प्रकट हुई, जो पांचाली भी कहलाई गई। वह बड़ी सुंदरी और सौभाग्यशाली थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, उसका शरीर श्याम रंग का था, केश काले काले और घुंघराले थे। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हो गई हूँ। उसके अंगों से नील कमल की सी सुगंध आ रही थी और चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। उसे पाने के लिए देवता, दानव और यक्ष भी ललायत थे। क्या पांचाली के स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडव भी पांचाल जाएंगे? अब ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में।
उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।